नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नए सैनिक स्कूल का लोकार्पण करेंगे। मॉर्गन स्टेनली इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट सूचकांक में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़कर 683 अरब 99 करोड़ डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। 10 दिन का गणेश चतुर्थी उत्सव आज से हर्षोल्लास से शुरू। और पेरिस में पैरालंपिक में भारत के होकाचो होताजे सीमा ने पुरुषों की शॉटपुट में कांस्य पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का कल ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल प्रक्षेपण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रक्षेपण के दौरान सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। एक रिपोर्ट।
यह प्रक्षेपण रणनीतिक बल कमान के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। ये देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और मील का पत्थर है। इस वर्ष अप्रैल में भारत में ओडिशा तट के नजदीक अबुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु क्षमता से लैस अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। रणनीतिक बल कमान ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ मिलकर इस परीक्षण का सफलतापूर्वक संचालन किया था। अग्नि मिसाइल लंबी दूरी परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपमाला कौशिक।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण करेंगे। ये विद्यालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रमुख परियोजना का हिस्सा है। इसका शिलान्यास वर्ष 2021 में किया गया था।
गोरखपुर के खाद कारखाना परिसर में 176 करोड़ रुपए की लागत से 49 एकड़ क्षेत्रफल में बना यह सैनिक स्कूल पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से संचालित होने वाला दूसरा सैनिक स्कूल है। प्रवेश परीक्षा के जरिए कक्षा 6 और 9 में दाखिला लेने के बाद इस सैनिक स्कूल में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। पहले चरण में इस स्कूल में कक्षा 6 और 9 में 84 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। इनमें कुल मिलाकर 40 छात्राएं और 128 छात्र हैं। यहाँ छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कैंपस हैं, लगभग 20 क्लासरूम, 4 लैब, छात्रावास, डाइनिंग हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, 1014 सीटेड ऑडिटोरियम, योगा सेंटर, इंडोर शूटिंग रेंज, इंडोर स्विमिंग पूल और CSD कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
उपराष्ट्रपति चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता भी करेंगे। इसका विषय है आधुनिक जीवन में ऋषि परंपरा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 2 अत्याधुनिक अस्पतालों का लोकार्पण करेंगे। श्री नड्डा आज एकमी शोभन बाईपास पर दरभंगा में बनने वाले एम्स स्थल का दौरा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री पटना मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की प्रगति का भी जायजा लेंगे। 5,400 बिस्तरों के साथ ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। श्री नड्डा पटना में तख्त श्री हरमंदिर साहिब भी जाएंगे। भारत ने मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल के इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट सूचकांक में चीन को पीछे छोड़ दिया है। सूचकांक में भारत का वेटेज 22.27% रहा, जबकि चीन का 21.58%। एक रिपोर्ट।
भारतीय बाजारों को अनुकूल व्यापक आर्थिक स्थितियों से लाभ हुआ है। हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के साथ साथ कॉर्पोरेट्स के अच्छे प्रदर्शन के कारण अधिक निवेश आया है। इसके अलावा भारतीय इक्विटी बाजार में व्यापक लाभ हुआ है। इस वर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 47% की वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में कमी और भारतीय ऋण बाजारों में पर्याप्त विदेशी निवेश से भी सुधार आया है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार सूचकांक में इस बदलाव के बाद भारत में लगभग 4.5 अरब डॉलर के निवेश की संभावना है। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 2 अरब डॉलर से अधिक की बढ़त के साथ 683 अरब 99 करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे सप्ताह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 3 सप्ताह में मुद्रा भंडार में 13 अरब 90 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है। इस दौरान स्वर्ण भंडार 86 करोड़ 20 लाख डॉलर से अधिक की बढ़त के साथ 61 अरब 86 करोड़ डॉलर के ऊपर पहुंच गया। प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग समूह एनपीजी की 78वीं बैठक कल नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित 18 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का मूल्यांकन करना था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश भर में 10 दिन के गणेश चतुर्थी उत्सव आज से हर्षोल्लास से शुरू हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाराष्ट्र में घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की तैयारियां जोरों पर हैं।
कई बड़े छोटे पंडालों में और लगभग सभी घरों और सोसाइटी में आज भगवान गणपति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और गणपति बाप्पा मोरिया के जयगान के बीच विस्तृत पूजा और आरती होगी। यह 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव जो महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का एक अंग है, हर साल कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है जिसमें प्रदर्शन प्रतियोगिताएं आदि शामिल होते हैं। इस वर्ष कई जगहों पर पर्यावरण अनुकूल गणेश उत्सव देखने को मिल रहा है। कई लोग मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग कर रहे हैं। रेल विभाग ने कई अतिरिक्त विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर महाराष्ट्र के नागरिकों को शुभकामनाएं दी। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
उधर तेलंगाना में विनायक चतुर्थी का पर्व पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मनाया जा रहा है। सरकारी और निजी संस्थानों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की जगह मिट्टी से बनी बप्पा की मूर्तियां वितरित की हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आनंद और उत्साह का ये पर्व सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और अच्छे भाग्य के प्रतीक हैं और करोड़ों लोगों के हृदय में विशेष स्थान रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनके साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव के बारे में भी चर्चा की। श्री मोदी ने सुझाव दिया कि शिक्षक विभिन्न भाषाओं में विद्यार्थियों को स्थानीय लोक कथाएं सुनाएं, जिससे विद्यार्थी कई भाषाएं सीख सकें और देश की जीवंत संस्कृति से परिचित हो सकें। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट से और राज्य पार्टी प्रमुख उदय भान को होडल से मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस में शामिल हुई पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना से और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल झज्जर से चुनाव लड़ेंगी। हरियाणा में सभी 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी से बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने को कहा है। भारत बांग्लादेश सीमा की स्थिति पर एक बैठक में बीजीबी ने भारतीय नागरिकों और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति शांतिपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में हाथरस में कल एक रोडवेज बस और मिनी टक्कर के बीच टक्कर में 4 बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। राज्य सरकार ने भी मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 564 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
त्रिपुरा विधानसभा के मॉनसून सत्र में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह ने कहा कि राज्य में कुछ दिन पहले हुई बाढ़ से क्षति का प्रारंभिक अनुमान करीब 14,247 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य सड़कों और ग्रामीण सड़कों पर पानी भर गया था और तालाब, जलाशय और खेत गाद और पानी से भर गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तविक क्षति का आकलन करने के बाद राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंप कर राहत और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त धनराशि का अनुरोध करेगी। डॉक्टर साह ने कहा कि कुल वित्तीय पैकेज 564 करोड़ रुपए का है, जो राज्य सरकार के फंड से पूरा किया जाएगा। पैकेज में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 70 करोड़ रुपए शामिल है, जहां अगले दो महीनों के लिए प्रति राशन कार्ड प्रति माह 10 किलो अतिरिक्त चावल प्रदान किया जाएगा। इससे राज्य के करीब 9.8 लाख राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला।
उधर तेलंगाना सरकार ने राज्य में 33 में से 29 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया है। राज्य सरकार ने इन जिलों में राहत कार्य तुरंत चलाने के लिए 3 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। इससे पहले 4 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित कर राहत अभियान चलाया जा रहा था। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। झारखंड, बिहार, कोंकण और गोवा में आज तेज वर्षा होगी। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, ओडिशा में कल तेज बारिश का अनुमान है। आज मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों और दक्षिण पश्चिम राजस्थान के साथ साथ अगले 6 दिन के दौरान छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब पेरिस पैरालंपिक खेल खबरों के साथ हैं फरत नाइज।
पेरिस में पैरालंपिक खेलों में कल प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद T64 में स्वर्ण और होकाटो होतोजे सेमा ने शॉर्ट पुट F57 में कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीतकर 17वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। आज 10वें दिन भारतीय खिलाड़ी तैराकी, साइकिलिंग, नौकायन और एथलेटिक्स में उतरेंगे। साइकिलिंग में ज्योति गडेरिया महिलाओं की C13 रोड रेस फाइनल में उतरेंगी। वहीं नौकायन में प्राची यादव VA सिंगल 200 मीटर VL2 सेमीफाइनल में खेलेंगी। एथलेटिक्स में नवदीप भालाफेक F41 फाइनल स्पर्धा में और सिमरन 200 मीटर T12 फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगी।
स्पेन में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में नितिका ने रजत पदक हासिल किया। नेहा ने 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
धन्यवाद लवलीन। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को जारी होने को राजस्थान पत्रिका ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है, भाजपा ने खोला पिटारा। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने को अमर उजाला ने हरियाणा की सियासत में कांग्रेसी दांव बताया। टाइम मैगजीन की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में अश्विनी वैष्णव, अनिल कपूर, नंदन निलेकणी और सुंदर पिचाई के नाम शामिल होने को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, सूची में भारत या भारतीय मूल के 15 लोग शामिल। हरिभूमि की खास खबर है, जम्मू कश्मीर में आतंकियों से दो दो हाथ करने को तैयार विलेज डिफेंस गार्ड। पत्र के अनुसार सैन्य यूनिटों में दिया जाता है 3 दिन का प्रशिक्षण। दैनिक भास्कर की खबर है, यूट्यूब ने माना, फिटनेस वीडियो का किशोरों पर पड़ता है विपरीत असर, लगेगी रोग, अब किशोरों को बार बार नहीं दिखेंगे फिटनेस और हिंसा से जुड़े वीडियो। यूरोपीय जलवायु परिवर्तन सेवा कॉपरनिक्स के हवाले से जनसत्ता ने लिखा है, वर्ष 2024 के सबसे गर्म रहने की संभावना।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नए सैनिक स्कूल का लोकार्पण करेंगे। मॉर्गन स्टेनले इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट सूचकांक में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़कर 683 अरब 99 करोड़ डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। 10 दिन का गणेश चतुर्थी उत्सव आज से हर्षोल्लास से शुरू और पेरिस में पैरालंपिक खेलों में भारत के होकाटो होताजे ने सेमा ने पुरुषों की शॉटपुट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।